أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى صلوات عليه محمد وعلى محمد سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں شکر گزار ہیں کہ جس نے توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کے خدمات میں آئیں اور دین کی ذمہ داری جو ہماری گردنوں پر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں خدایا ہماری زبان سے وہ جملے نکال جو صرف اور صرف تیری خوشنودی کا باعث ہوں پروردگار ہمارے کانوں میں وہ آوازیں سنا جس کے ذریعے سے ہماری توفیقات میں اضافہ ہو خدایا ہمارے ان تمام خدمات کو بحق محمد و آل محمد قبول فرما جن باتوں کو بتایا گیا ہے خالصتاً للہ ہے اللہ کے لیے اور کہیں پر کسی کو تکلیف ہوئی ہے کہ ایسے جملے ایسے الفاظ سے وہ آمدن نہیں ہے جان بوجھ کر نہیں ہے بلکہ دینی فرائض جو ہمارے گردنوں پر ہیں ان کو ادا کرنا ہے تو آپ ہمیں بحل فرمائیں بخش دیں खुदा इंशाअल्लाह हम सबको हमारे गुनाहों को बख्शे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद दस्तूरुल अमल हयात है, इंसान की जिंदगी के लिए बेहतरीन अगर कोई किताब है वो कुरान मजीद है, और सारी इंसानियत के लिए आई है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की किताब का नाम नहीं है, सारे इंसानों के लिए। इसलिए जो लोग पढ़े हजरात हैं, पढ़े लिखे जवान बच्चे, जो लोग हत्ता हर मोमिन का काम भी यही है कि पयाम दीन को दूसरे तक पहुँचाएँ। अल्लाहु वलीयुल्लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। अगर हमारे पास लाइट है तो अंधेरे में जो लोग हैं उनको रोशनी बतानी चाहिए, और आप लोग बता सकते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माना वो था जब हम शिया कहते तो किसी को पता नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को मालूम है कि हम कौन हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे अफकार क्या हैं, और ये भी पता चल गया है कि हम हर एक के सामने सर नहीं झुकाते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सही वो कोशिश स्ट्रगल एंड स्ट्राइव के उनवान से होने वाली ये हमारी आठवीं कड़ी है और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। हमने कोशिश ये की है कि हमारे पास पैसिव बिहेवियर ना रहे, पैसिव यानी नाउम्मीदी हम में ना रहे, और मोमिन के पास दो चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए, एक एहसास कमतरी जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी मैं कमतर हूँ कभी मोमिन को नहीं होना चाहिए। क्यों? कुरान कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट नेशन। कुरान कहता है तुम बेहतर हो, क्यों बेहतर हो? तुम्हारे पास अल्लाह है जी, तुम्हारे पास अहले बैत। कुल अल इज्जतु लिल्लाह व लिरसूलिह वलिल मोमिनीन। अज़्ज़ा गलबा किसका है, अल्लाह का है या रसूलुल्लाह का या मोमिनीन का है? और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं सारी दुनिया में गलबा हमारा हर तरह से, हर तरफ। ईस्ट में जाइए, आपको खबर दूं चाइनीस 200 तालिबुल इल्म हैं कुम में, चाइनीस शिया 200 स्टूडेंट हैं जो आलिम बन रहे हैं। चाइना में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वहाँ भी हैं, मगर मैं कहता हूँ ग्लोब को उठा करके देखिए, ग्लोब में यह है कि ज़मीन फिर रही है, हर लम्हा कहीं नमाज फज्र हो रही है, कहीं नमाज ज़ोहर हो रही है, कहीं मगरिब हो रही है, हर लम्हा है ये, ठीक है, हर लम्हा अज़ान हो रही है, हर लम्हा जहाँ अज़ान हो रही है हर लम्हा मजलिस हो रही है। ये इमाम हुसैन ने, इसीलिए इमाम सज्जाद ने क्या कहा था, थोड़ी देर रुक पता चल जाएगा जीता कौन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज दुनिया भर देखते हैं, जरा सा आप लोग करीब आइए, आज आखिरी दिन भी है, जरा सा और करीब आ जाइए, हम अन करीब हमसे और जरा सा करीब आइए माशाल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान इल्ला मा सआ, इंसान नहीं है मगर उसकी कोशिश, तो कोशिश ना हो तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। और मैंने इब्तदाई मजालिसों में अर्ज किया था, हमारा जिस्म है और हमारी एबिलिटीज हैं, हमारा जिस्म कोशिश में लगा हुआ है, पैदा होने के साथ, पैदा होने से पहले ही जैसे ही माँ के शिकम में आए ग्रोथ शुरू हो गई, जिस्म जो है अपना काम कर रहा है, यहाँ तक कि साइंटिफिक दुनिया कहती है एक सेल जहाँ पर मरता है, कई सेल्स मरते हैं और उस जगह रिप्लेसमेंट होता है, हर 7 साल में पूरी बॉडी रिप्लेस हो जाती है, पूरी बॉडी में रिप्लेसमेंट हो जाता है, बदल जाता है। सेल जहां पे एक सेल निकला तो उसी तरह का सेल आता है वहां पर, यानी जिस्म ये बता रहा है हर जगह खिलाफत है अल्लाह की, जो निकला वैसे ही आएगा, सरकार की जगह ऐसे वैसे कैसे आ सकता है। सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोशिश ये करें कि कोशिश में एक जिस्म जो मेरी कोशिश में लगा हुआ है उसी तरह से मेरी फिक्र भी कोशिश में लगी रहे। पहली चीज हमारे जहन को टीच करना है कि मैं कामयाब होने के लिए इस दुनिया में आया हूं। जो टीच करेंगे वही टीच होगा। आजकल की दुनिया में बताया जाता है कि सबसे बड़ा जानवर जो हमारे आजकल है वो डायनासोर का जमाना तो चला गया, आज जो है हमारे पास एलिफेंट है, हाथी है। हाथी को कैसे कंट्रोल करते हैं लोग? हाथी को बचपने ही में पैदा होते ही क्या कर देते हैं? जंजीर डालते हैं पैर, लोहे की जंजीर, ठीक। वो छुड़ाने की कोशिश करता, लात मारता लाख लाख, मगर वो देखता कि होता नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जंजीर को निकाल करके रस्सी बांधते हैं। अब वो बढ़ गया है, मगर चूंकि वो जंजीर ही समझ रहा है, अब वो बेचारा जा ही नहीं पाता, नहीं नहीं में। उसके बाद और आगे बढ़े, अब उस रस्सी को भी खोल देते हैं, वो सिर्फ आंखों से कंट्रोल करते हैं। तो इंसान जो है हाथी को कंट्रोल में लाता है। वो हाथी कैसे कंट्रोल में आ गया? इसलिए कैद हुआ कि मैं कैदी हूं, मैं आजाद नहीं हो सकता। अरे तो जगह तालिब हूं। तो कभी आप तसव्वुर ना कीजिए कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, कहिए कि कामयाब होने के लिए आया हूं, कामयाब होकर रहूंगा। अल्लाह ने मुझे कामयाबियां इनायत की हैं, एक तो रसूल हमारा कामयाब है, दूसरा गदीर हमारी कामयाब है, गदीर का मौला। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोशिश और उसके बाद प्लानिंग, मैंने पांचों उसूल बयान किए थे, अब उसको रिपीट नहीं करूंगा। और नतीजा आज जो निकालना है, कुरान ये कह रहा है वह अन लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, और उसके बाद कुरान ये कहता है कि तुम्हारी कोशिश खत्म नहीं होती, वह इन सायहु सौफा युरा, जो कोशिश करोगे फौरन ही रिजल्ट निकलेगा। अगर बच्चे ने 10 महीने मेहनत की है या नहीं की है, इम्तिहान से पता चल जाएगा किस पानी में है। 35% लिया है, 40 लिया है, 50 लिया है, 60 लिया है, इम्तिहान। टीचर को मालूम नहीं था आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं जी, टीचर को मालूम नहीं था? मालूम था, क्यों इम्तिहान ले रहे हैं? लोग जान जाए, खुद स्टूडेंट जान जाए कि हम बेइंसाफी नहीं करते, खुदा भी हमसे इम्तिहान क्यों लेता है? वो इल्म रखता है हम कहां जाते हैं, किस मकाम पर हैं। इम्तिहान उसका इल्म रोकता नहीं है, इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि मालूम हो जाए कि अली कौन है, गैर कौन है, ताकि मालूम हो जाए कि गैर। इब्राहिम से इम्तिहान लिया, उसी तरह तुम्हारे से भी इम्तिहान लेता ही रहेगा। तो इम्तिहान हदीस में है कि अलबला लिल वला, अलबला बला, हम लोग बला बुरी बुरी समझते हैं बला को, मोमिन बलाओं को बुरी नहीं समझता। क्यों? बला इम्तिहान के माने, अरबी में बला के माने इम्तिहान, अलबला इम्तिहान, बलाएं जो आती हैं इम्तिहान के लिए आती हैं। अगर रात ना होती तो ये चराग जलता नहीं था। खुदा ने अंधेरे देख करके इंसान को क्रिएटिविटी बताई, अंदर का लाइट जला। तवज्जो का तालिब हो, रिसर्च कर, तुम कामयाब होना तो इस रोशनी की तरफ आ। खुदा ने बहुत से मौकों पर हमें सप्रेस किया है, कभी गुर्बत के जरिए से, कभी परेशानियों के जरिए से, ताकि उठें परेशान ना हो, कामयाब होके बताएं, इसलिए कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि बेदार होने का सोने का मौका नहीं है। अगर ऐसा हम समझने लगेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कामयाबी یقینی طور پر ہے. سب وہ واقعات ہمارے پاس ملتے ہیں جن کے پاس صفر تھا اور صفر سے وہ کہیں اور آگے بڑھ گئے. بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا, ان کو زیرو ہو گئے. کیوں؟ اصولوں کو جنہوں نے اپنا لیا وہ کامیاب یقین ہوں گے, جو پرنسپلز کو لے لیا وہ کامیاب یقیناً ہوں گے. اور کامیاب ہونے کا ذریعہ ہی پرنسپلز ہے, اصول ہیں. اصول اگر آپ نے اپنا لیے تو آپ کی کامیابی لازمی ہے, اگر آپ نے اصولوں کو چھوڑ دیا تو آپ کی ناکامی یقینی ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے, ہدف کو معین کرنا چاہیے, ایم کو, مقصد کو معین کرنا چاہیے. مجھے کیا بننا چاہیے, بچپنے سے بچے ماں باپ سکھائیں, بچہ جیسے ہی عقل مند ہونے لگے اس کو سکھائیں, بچے کیا بننا چاہتے ہو, بچہ کچھ کہے گا کہو ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, کمپیوٹر پروگرامر بنوں گا, اور میں فلاں جگہ. یہ نہیں کہ وہ ادھر ادھر کے ہیرو زیرو کی چکر میں نہ جائے, بلکہ چکر میں جائے کہ تعلیم حاصل کروں گا اور یہ بن کے بتاؤں گا. پہلے ہی سے اگر انسان اس طرح سے لائے گا تو آپ لوگوں میں, ہم لوگوں میں کامیابی یقینی ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ انسان ارادہ کرے اور کامیاب نہ ہو, ناممکن ہے. کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو, اس لیے کہ خدا نے اصولوں کو معین کیا ہے. مثلا میں اس مثال دیتا ہوں تو اچھی طرح سے. سید قطب اخوان المسلمین کا فاؤنڈر ہے, بہت بڑا اسکالر, سنی اسکالر ہے, عالم ہے, بہت ہی فاضل گزر گیا. اس نے تفسیر لکھی ہے فی ظلال القرآن. وہ ویسٹرن کنٹریز پہ جا کر کے واپس آتا ہے, جملہ کہتا ہے کہ وجدت الاسلام بدون المسلم, میں نے مغربی دنیا میں اسلام کو پایا مگر مسلمان نہیں ملا. ہے میرے ساتھ آپ؟ مجھے اسلام ملا مگر مسلمان نہیں ملا. اپنے وطن میں آئے تو مسلمان ملا, اسلام نہیں ملا. تو کامیاب ہونے کے اصول کس نے لے لیے؟ انہوں نے لے لیے. اب دیکھیے مولا کی حدیث, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ہوشیار رہنا. میں نے پہلے بتایا تھا جب بھی معصوم دوسرے معصوم کو بولتا ہے حقیقت میں کس کے لیے بولتا ہے؟ ہمارے لیے, ہم بیدار ہوں ان کے نام سے. فارسی میں ہے دیوار سے بولو تاکہ ساس سمجھ جائے, دیوار سے کہو تاکہ ساس کو میسج ملے. یعنی مطلب ہے کہ انڈائریکٹ بولو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیں کیا کرنا چاہتے ہیں. عجیب و غریب ہے کہ ہم لوگ ان اصولوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان اصولوں پر چلتے نہیں ہیں. بیٹا ہوشیار رہو, ہوشیار رہو بیٹا حسن, قرآن پر تمہارا غیر عمل کر کے آگے نہ بڑھ جائے. سمجھ گئے؟ کتنی عجیب. یہ صرف یہ جملہ ایک اشرا چاہیے صرف اس جملے کو سمجھنے کے لیے. بیٹا ہوشیار رہو, ہوشیار رہو, قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر یعنی غیر مسلم آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے. جو بھی ان اصولوں کو لے گا کلمہ نہ پڑھے مگر کامیاب ہوگا. اس لیے کہ یہ دنیا علل و معلول کی دنیا ہے, کاز اور افیکٹ کی دنیا ہے. جہاں کہیں کاز ہے اس کا افیکٹ ہونا ضروری ہے, جہاں علت ہے اس کا معلول کا ہونا ضروری ہے. اگر کافر مدد محنت کرے گا اس کو ملے گا. اے پروردگار تو نے کافر کو دے دیا, خدا نے کہا نہ, میں نے اصول کو چھوڑا ہے. جو اصول کو لے گا, جو اصول کو چھوڑے گا وہ ناکام رہے گا. میرے بچوں, میرے بہنوں, میری بیٹیوں, میرے جوانوں, بیدار ہو ذرا سا, آنکھوں کو رگڑو, اٹھو. میں نے کہا مولا نے فرمایا انسان سو رہا ہے, الناس نیامن, جب مریں گے تو اٹھیں گے قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد. وہ بھی اچھی طرح سے ڈال دیتے ہیں, زمین کے لیول پہ بھی نہیں ہوتی, اوپر اور ڈالو بھائی, اور ڈالو. بتایا گیا بچنا نہیں چاہیے قبر کی مٹی, بچنا نہیں چاہیے, جتنی بھی ہے پوری ڈال دو تاکہ اٹھے ہی نہیں. جی اب وہاں پر اٹھ کے کیا فائدہ, بس آنکھ کفن میں آنکھ کھولتا ہے, خدایا مجھے چھوڑ دے, ارجعونی لعلی اعمل صالحا, پروردگار واپس لوٹا دے, نیک عمل کر کے واپس آؤں گا. خدا جھوٹا, زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی تھیں, اس وقت بھی یہی کہا تھا مالک اب کی بچا لے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, مگر بچا لیا تو بھلا دیا خدا کو. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی منجدھار میں آتی ہے تو بے اختیار پکارتے ہیں پروردگار تو مجھے بچا لے. اچھا یہ کشتی ضروری نہیں کہ بولنے والا مسلمان ہو. میں ایک مرتبہ بینگلور سے آ رہا تھا, اسی اتفاق سے جیٹ ایئر ہی تھا, بادلوں کا زمانہ, اگست کا زمانہ تھا, گیا. اب جو نیچے آیا پلین تقریباً میں سمجھتا ہوں 50-100 فٹ نیچے ایک دم جھٹکا جو آیا, پلیٹس جو ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے تقریباً 1 فٹ اڑ گئے. میں تو ہم کیوریس ہی تھے, سب کی طرف دیکھ رہا تھا, سب اوپر دیکھ رہے تھے, یعنی بتا رہے تھے کہ اب اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہاں پر دین ریلیجن کوئی نہیں تھا, سارے مسلمان کافر جو بھی بیٹھے تھے پلین کے اندر سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے جو بچا سکتا ہے, اسی کا نام ہم اللہ کہتے ہیں. تو خدا یہ کہہ رہا کہ جب پریشان ہوتے ہو تو شک کر کے پکارتے نہیں ہو, یقین سے پکارتے ہو. تو مسئلہ یقین ہی, سلوا پڑھیے محمد والا. مخلصین لہ الدین, جب بیماریاں آئیں پریشانیاں آئیں تو یقیناً کرتے ہیں مولا بلائے بچا لیجئے کیجئے, میں پریشان ہوں, مولا نے سہارا دے دیا, اس کے داہم یشرکون, اس کے بعد ٹاٹا جی بھول جاتے ہیں خدا کہاں, یہ کہ میں ہوں, میں نے کیا, میں بچا لیا, میں نے کیا, کون دیا, کون میرا چچا کام آیا مجھے, کون میرا ماموں کام آیا, کون میرا بھائی, میں نے محنت کی. شرک ہے بھیا, بہت سے محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. محنت سے اگر کچھ مل جاتا تو مزدور کبھی مزدور نہیں رہتا. محنت کے ساتھ عقل استعمال کیجئے, عقل کو محنت سے ملائیے تو کامیابی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد. ہے نہیں میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے دیکھیے کنکلوژن, آج پورا خلاصہ لے کے جانا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے عملی میدان میں کودا نہیں تو ہمیں کامیابیاں نہیں ملیں گی. مثال ہمارے پاس کنٹریز کی مثال ہے, جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ناگاساکی ہیروشیما تباہ کر دیا گیا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, لیکن آج کیا ہو گیا, ہر گھر میں جاپان. وہ کون سا گھر ہے جہاں جاپان نہیں ہے, دیکھیے اب, یا سیل فون کی صورت میں یا ریڈیو کی صورت میں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہے. اب اس اکنامک اندازہ لگائیے, جو کنٹری بالکل برباد ہو چکا تھا وہ ہر گھر میں پہنچ گیا, کیسے, کوشش سے. آج معلوم ہے کہ جاپان کے نوجوان جو پریشان ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے نہیں, اگر 95 ایبو نہیں لیا میں تو میں اس سوسائٹی کے قابل نہیں رہوں گا. 95 ایبو, وہ زمانہ انڈیا میں بھی آنے والا ہے. ابھی جو چل رہی جا بات 35% 65% لے لیا, نہ, ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آپ کے پاس پرسنٹیج بڑھتا چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ زمانہ آئے, آپ خود زمانے کو آگے بڑھ جائیے. زمانے سے آگے کب بڑھ سکتے ہیں, پرنسپلز کو اپنا لیں. جاپان ہو گیا نا, ابھی مولانا کوئی مسلم کنٹری کی مثال دیجئے, یہ جاپان وپان گیا ہے. اچھا بھی چلیے مسلم کنٹری کی مثال لیجئے, ہمارا انقلاب آئے ہے, یہ مظلوم انقلاب ہے, کتنا مظلوم ہے ہمارا انقلاب. نہ ہم نے ہمارے عالم کو پہچانا, نہ ہم نے اپنے انقلاب کو پہچانا, صرف امام خمینی رحمت اللہ کی تسبیح اور تقدس کو پہچان لے. جب یہ نائب امام ہے تو امام کا کیا عالم ہے, نائب امام کیا حکمت عملی. کہ جب میں انقلاب سے پہلے شاہ کے زمانے میں ایران میں تھا, 79 میں آغا کو نکال دیا گیا تھا عراق سے, آغا نے خواہش کی مسلم کنٹری سے ویزا دیو, ویزا دو, کوئی نہیں دیا, کویت نے بھی انکار کر دیا, تو آغا فرانس گئے. فرانس میں 6 مہینے رہے, میسج جاتے تھے, وہ سی ڈی, اس وقت سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا, کیسٹ کا زمانہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نماز مغرب ہوئی, فوراً ایک نے دے دیا, تھما دیا, فوراً اس کے بعد دوسری تیسری, اس طرح سے کیسٹ ریولوشن کہتے ہیں, کیسٹ کے ذریعے سے, یعنی آواز وہاں سے چلی, کیسٹ کے ذریعے سے سارے مقامات پہ چلی. खुदा ये कहता है कि तू मेरा नाम बुलंद कर, मैं तेरा नाम बुलंद कर दूंगा, तू मुझे मेरे दिन को इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या अल्लाह मोहताज है? इन अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह नीडी नहीं है, मोहताज नहीं है। अल्लाह के दीन की मदद करो तो तुम्हारी मदद होगी। तो 79 में इनकलाब आया, 37% लिटरेसी थी, कितनी 37% ओनली, 37% पढ़ा लिखा था ईरानी, आज 100% 400 यूनिवर्सिटीज, 400 यूनिवर्सिटीज, सब कह रहे हैं कि दबाओ, इकोनॉमिक सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये सैंक्शन, अगर कोई परवाह नहीं, सजदे करेंगे, मौला को पुकारेंगे, तेरे सामने झुकेंगे नहीं, कामयाब होकर के बताएंगे, इसलिए कि हम अली वाले हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। जुमला सुनिए अच्छी तरह से, अरे तुम हमें इक्तसादी पाबंदी क्या लगाते हो, हम शेबे अबी तालिब में पलने वाले, डराते हो इस इक्तसादी पाबंदी से, हमें डराते हो, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, रोटी नहीं देंगे। आगा खुमैनी ने कहा सजदा करो, अब समझ जाओ कितने जलील हैं ये लोग, गुलामी की रोटी देते थे, अब गुलाम ना रहो, खड़े हो जाओ। अब इतने कि आज प्रोडक्शन ईरान में गेहूं पहले 80% आता था, अब ये फॉरेन में भेज रहे हैं, फ्रूट्स बाहर से आते थे अब भेज रहे हैं। 31 साल में पूरा ढंग बदला, इंशाल्लाह 2012 में स्पेस पे इंसान जाने वाला है, 2019 में चांद पे जाने वाले हैं। मक्के से जाना चाहिए था, अरे भाई मक्के से कहां जाएगा, जहां अली निकला वहां इल्म कहां रहेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे जोर से वो भी डर गया, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी देखिए अब मुसलमानों के लिए भी बेहतरीन नमूना क्या है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश, इंसान मुसलमान भी नहीं कहा, मोमिन भी नहीं कहा, इंसान कोशिश करेगा मिलेगा, खा वो मोमिन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कोशिश करेगा मिलेगा। ये कहां से है भाई, 400 यूनिवर्सिटीज, 400 यूनिवर्सिटीज इतनी पाबंदियों के बाद, जी कैसे बना लिया, इसलिए कि बाबे इल्म के मानने वाले, ठीक है, जब तक नहीं था सीखा दूसरों से, अब दूसरों को सिखाएंगे। बताते हैं कि आज देखिए मैं ये जो पढ़ रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, और ऑनलाइन बैठने वाले मेरी बेटियां, बच्चे, जवान बच्चे, ये देखिए आ जाकर, जर्मन का साइंटिस्ट, उसका नाम है एरिक, कुछ जर्मनी नाम है, जरा सा याद नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, लिखता है कि 3 साल में, ये जो लास्ट 3 ईयर्स में ईरान ने जो तरक्की की है यूरोप ने 11 साल में नहीं की है। 3 साल में ईरान ने जो तरक्की की है यूरोप ने 11 साल में नहीं की है, और अब यूरोप रुक गया है, वो बढ़ रहा है, इसीलिए तो परेशानी है, घोटो पकड़ो ना दो, ये ना करो, ये कह रहे हैं कोई परवाह नहीं है, ला दायर नहनो इला रब्बेना लमुन कले बून, अब हमें परवाह नहीं है, तुम तो मार दो, जैसे याद है मूसा के जादूगरों ने क्या कहा था, जैसे ईमान आका मारो पीटो कुछ नहीं, हैंग कर दो, परेशानी नहीं, इसलिए कि अब हमें अल्लाह मिल गया, हमें अब हमें मौला मिल गया, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आज तरक्की, साइंटिफिक तरक्की, उसमें मिसाल दी है, पहली मिसाल अभी जो उन्होंने स्पेस में भेजा है, लाइव ऑर्गन्स को भेजा है स्पेस, स्पेस में लाइव ऑर्गन यानी जिंदा जानवरों को, जैसे चूहे हैं, काय के लिए, रिसर्च के लिए स्पेस में, खला में, और काय के लिए भेजा, ताकि इंसान जाकर के कैसे सर्वाइव हो सकता है, पाबंदियों के बाद ठीक। अब उसके बाद कहते हैं कि सलवात पढ़े मोहम्मद वाले लोग कह रहे हैं मजलिस की गर्मी बढ़ गई है, जरा फैन चलाइए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे साथ आप लोग जी, आवाज भी नहीं आ रही, लेडीज में भी नहीं आ रही। अच्छा, आवाज भी नहीं जा रही है, इसलिए बेचैनी है औरतों में। माशाल्लाह सुन रही थे बराबर। सलावात जरा सा आगे बढ़िए, जरा सा आगे। साइंटिस्ट ने चंद चीजों का नाम लिया है, ये उसमें से एक स्पेस का, दूसरा जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, साइंस में जो तरक्की की है उसमें, जैसे क्लोनिंग के मसले में ईरान ने क्लोनिंग की है ऑलरेडी। ये बताया कि बकरे में नुकसानदेह चीज चर्बी है, का चर्बी ही ना रहे तो ऐसा बकरा भी क्लोन कर दिया जिसमें चर्बी ही नहीं है। तो ऐसी काम बहुत हो रहा है। इसी तरह से ऑपरेशन के लिए आपको मालूम है तेहरान वन ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी के लिए वन ऑफ द टॉप सिटी है, जो बहुत से लोग बाहर के आकर के नाक को दुरुस्त कर रहे हैं, कान को दुरुस्त कर रहे हैं। कब? 31 साल में, सिर्फ 31 ईयर्स में। एग्जाम्पल हमारे पास है, मिसाल, इतने दबाने के बाद। मैं मिसाल देता हूँ बच्चों, समझो, अलबला लिल वाला, बलाएं जो आती है परेशानियां उभरने के लिए। मिसाल दूं, अगर कहीं घास हो करीब, वहां पर एक छोटा सा पत्थर डाल के छोड़ भूल जाइए, घास पे पत्थर डाल दीजिए भूल जाइए, चंद दिनों बाद देखेंगे चारों तरफ से और स्ट्रॉन्ग घास निकलेगी। ये कहेगी घास फितरत को दबा नहीं सकती, फितरत उभर के रहेगी, चंद दिन नजर नहीं आएगी, 1400 साल दबी अबशियत उभरेगी। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन मौका, कैश इन कीजिए, इस मौके को फायदा उठाइए, इस मौके से फायदा उठाइए। अभी बता रहा था क्रेसेंट इंटरनेशनल मैगजीन हमारे पास है टोरंटो में, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। दो तरह का इस्लाम है, एक ईरान पेश कर रहा है, एक सऊदी पेश कर रहा है। देखो भाई, एक गोद में बैठा हुआ है फिरौन के, एक फिरौन की टक्कर में लगा हुआ है। देखो दोस्त किसका है उससे पहचान। सलाम बड़ी मोहम्मद। कौन है भैया ये लोग, कौन है, ये तरक्की कैसे करता? अन लैसा लिल इंसाने इल्ला मासा, कोशिश करो तो तुम भी कामयाब होंगे। ऐसी कोशिश कि दुनिया 31 साल में देख रही है। मैं सोचता था कि हदीस देखिए बहुत अच्छी तरह से, आदीसों को, दुआओं को सिर्फ रिचुअलिस्टिक मत बनाइए, हत्ता जियारतों को भी बहुत पाउंडर कीजिए, गौर कीजिए। हदीस में है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे इमाम ज़माना अज्जलल्लाह, मौला क्या करेंगे, उकूल को कामिल करेंगे। उकूल यानी सेंस ऑफ रीजनिंग, अक्ल को मौला क्या करेंगे, कामिल करेंगे। मैंने बताया था आज की साइंटिफिक दुनिया बता रही है कि इंसान जो ब्रेन को यूज करता है 3% है, अगर 6% यूज कर लिया तो ब्रिलियंट स्कॉलर है। मौला जब तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा, मौला इसके ब्रेन की सलाहियतों को पूरी तरह से यूटिलाइज करने देंगे। जब 6% में यह आलम है तो 100% जब यूज होगा तो क्या होगा, वह साबिक को भी देख सकेगा, लाहक को भी देख सकेगा, दीवारें उसकी निगाहें रोक नहीं सकेंगी। ये तरक्की है कैसे, इमाम के आने के बाद। तो ये मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे होगा, मगर आज एग्जाम्पल मालूम हो रही है। पहले मेरे बचपने में समझ में नहीं आता कि इमाम औला हुकूमत कैसे करेंगे, इनकलाब आया तो समझ में, हाँ भाई हो सकता है। एक आलिम ना उसने बंदूक लिया हाथ में, कहीं है इमाम को मैंने बंदूक लिया हो, तालिबान की तरह उनको मार रहे हैं इनको मार रहे हैं। अरे बनी उमैया आ जाओ, अली वाले आ जाओ, तुम आज भी मार रहे हो, आज आज भी हम इल्म दे रहे हैं उसी तरह जिस तरह से अली देता रहा। चलो बात बढ़ी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जियारत को जाने वालों से गुजारिश है, जियारत को जाने वाले टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी वाले मुखालिफत करते हैं, दो चार आदमी मुखालिफत से डरिए नहीं, टैक्सी वाले किसी भी कंट्री के क्यों ना हो मुखालिफत करते ही हैं। तो टैक्सी वाले मेयार नहीं है ईरान की हुकूमत के। बहुत से जाहिरीन आके हमसे कहते मौलाना हम जिससे बात करते नाराज है, नाराज है। भैया नाराज होते तो ये हुकूमत रहती ही नहीं थी। नाराजी होने की दलील यह है कि जहां रहबर जाता है हजारों का मजमा आके बताता है हम तुझसे राती हैं, तेरी हुकूमत से राजी हैं, तो चंद दिनों की परेशानियां सब जगह हैं, हमारे पास भी हैं। बाय 225 एवरीवन विल हैव ए हाउस। 225 तक ईरानी, हर ईरानी के पास घर रहेगा। आज कोई ईरानी भूखा सोता नहीं है। इससे सस्ती रोटी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप कभी ज़ियारत हों, खुदा इंशाल्लाह मौला ले जाए आप हम सबको, जाइए वहां पर, रोटी जो है सबसे ज्यादा सस्ती है। सिस्टम बनाया इस तरह से कि आप कभी मोहताज ना रहें और किसी के अंडर ना रहें। ये कंट्री बता रही है, ये मिसाल बता रही है, कोशिश से जिस तरह से जापान आगे बढ़ा है उसी तरह से मोमिन भी कोशिश करे, जापान से भी आगे बढ़ सकता है। खुदा ने मुझे भी वही ब्रेन दिया है, उसको भी उसने इस्तेमाल किया, मैंने सुला दिया। ना सिर्फ सुलाया बल्कि सुलाया जाता है, जन्नत जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना नमाज पढ़ो ना रोजा रखो, चले जाओ जन्नत में जैसे वालिद बुजुर्गवार की है। अब्बा की जायदाद है चले जाएंगे। भाई भाई किसने कहा इस तरह से नहीं है। मौला ने फरमाया कि हदीस में सरकार की अल जन्ना हुफ्फत बिल मकारे, जन्नत परेशानियों के बाद हासिल होती है। यानी कसम सुबह नवादान के साथ उठो, अल्लाह अकबर, कौन पुकार रहा है, अल्लाह अकबर, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इंडिया में ये खुद एक आवाज मौजूदा है जी, कोई आवाज बड़ा नहीं है, है? मैं कल परसों बता रहा था, बाज वक्त मैं मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं मौलाना आप हॉलीवुड बॉलीवुड बहुत देखते हैं, मालूम होता है। भैया देखने की जरूरत नहीं, आपकी सूरतों को देखता हूँ तो मैं समझ आ जाता। मिसाल आप नहीं है, मिसाल इंसानी माशरा, जब देखता हूँ सड़क पे जाता हूँ उससे पता चल जाता है कि इसने क्या दिया है हमें, इसने कुछ नहीं दिया है। आज इंडियन एपिसोड को देखिए, तीन चीजें जरूर मेरी बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे आज मैसेज देना है। मैं मैसेजेस के बगैर जाता नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं आता ही हूँ मैसेजेस के लिए। और खुदा से दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारी जबान से कोई एक बच्चा भी बेदार हो गया तो मेरी कामयाबी। लंदन में एक अशरा पढ़ने के बाद मुझसे बच्चों ने सवाल किया, मौलाना व्हाई डू यू रिसाइट मजलिस, आपके मजलिस पढ़ने का मकसद क्या है, व्हाई डू यू रिसाइट। मैंने कहा कि मेरा सिर्फ कुछ भी मकसद नहीं है। कोई एक मजमे से एक जवान बोले कि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे सोचने का फिक्र का अंदाज बदल गया, मेरी कामयाबी। तो तकरीबन 40 मेरे पास नौजवानों के ईमेल आए, हमारी जिंदगी बदली इन मजलिसों ने बदला। मैंने कहा ये मैंने नहीं बदला, इमाम हुसैन ने बदला। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए रिवायतों में है, देखिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझिए, रिवायतों में है कि सबसे ज्यादा रोजे कियामत शफात करने वाले कौन है, इमाम हुसैन। कितने 14 मासूमीन है ना हमारे पास, जब दरवाजे 12 इमामों के दरवाजे हैं जन्नत के, सबसे ज्यादा जो भीड़ होगी इमाम हुसैन के पास, सबसे ज्यादा बख्शवाने वाले इमाम हुसैन। इसको एनालाइज किया गया, शहीद मुतारी ने कहा इसके माने क्या हैं, इसलिए कि इमाम के नाम से जितनी मजलिसें होती हैं, तो आप जब मजलिस हुसैन में आते हैं तो दीन सीखते हैं, तो जब दीन सीखते हैं तो जन्नती सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मेरे नौजवान बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आज के एपिसोड्स हिंदू यानी इंडिया में जो एपिसोड हैं, तीन चीजें कॉमन हैं। नंबर वन, पूजा कॉमन है, जरा गौर कीजिए, पूजा हैज टू बी देयर एवरी एपिसोड, यानी इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी तुम भी, यही है नतीजा कामयाबी का, यानी प्रीचिंग हो रही है इनडायरेक्ट, ब्रेन वॉश हो रहा है। नंबर टू, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बीवी है मगर ऑफिस में कोई मिल गई ना भाई, ये दिल फेंक वाके हुए हैं, जहां जाते हैं दिल फेंक देते हैं, हैं फेंक दिया वहां पर जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस्लाम में क्या है? अल्लाह अकबर, ना महरम की तरफ देखना शैतान का तीर है। रेड लाइट से पहले एम्बर लाइट आती है, येलो लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, वार्निंग, अब रेड लाइट आने वाली है, इसीलिए इस्लाम ने कहा देखना हराम है, इसलिए के बाद उसके बाद रेड लाइट, उसके बाद रेड लाइट आने वाली है, होशियार रहो, देखना हराम है। दो चीजें, तीसरी चीज जो कॉमन है, इंटर रेशियल मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस जी। एक कमरा है उसमें बुत भी है मुसल्ला भी है, यानी कॉमन है, कोई बात नहीं, सैदानी एक हिंदू से भी शादी कर ले, एक मुसलमान हिंदू से भी शादी कर ले, कोई बात नहीं। बाद में हमारे पास आते मौलाना अब क्या करें, अब कुरान भी लटका दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों मौलाना, क्यों नहीं होगा? बचपने से दीन की तरबियत न करें, न बताएं बच्चा कितना अहम है, गुट्टी में डालिए तुम बेहतर हो, तुम्हारा साथी एक शिया हो सकता है। बचपने से ही ये दूध में पिलाए मां कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं हो सकता, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे बेटियों, मेरी बेटियों से गुजारिश है, मेरे बेटों से बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग जरा होशियार रहिए, फ्रजाइल दुनिया है, बहुत ही फ्रजाइल दुनिया है, बहुत तेजी से हालात चेंज हो रहे हैं, दिल फेंक वाके ना हो जाइए, रेजिस्ट कीजिए। कैसे कर सकते हैं, मैं मिसाल देता हूं, झूमिए मिसाल को आए है। अगर मेयार मेरा नौजवान मुकर्रर कर लिया, मेरी आइडियल कौन होगी, मेरा आइडियल कौन होगा, लड़कियां ये मुकर्रर करें मेरा आइडियल क्या होगा, लड़के ये मुकर्रर करें मेरा आइडियल क्या होगी, पहला उसमें क्या मेयार होना चाहिए, ईमान, दूसरा मेयार क्या है, अखलाक, तीसरा मेयार क्या है, इल्म, चौथा मेयार है खानदान। मेयार बुलंद रखिए, जब तक वो ना मिले करिए नहीं शादी। कहां से सीखे, खदीजतुल कुबरा से सीखे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, शहजादी ने हमसे आजकल पूछते हैं मौलाना क्या एक लड़का एक लड़की कह सकती है आई लाइक यू आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू, प्रपोज कर सकती है? ओहो माशाल्लाह, फिल्मों का असर हो रहा है ना भाई, कैन ए गर्ल प्रपोज हरसेल्फ? अबे हमारे पास देखिए इस्लाम आगे है, हम पीछे हैं। 1400 साल पहले जनाब खदीजतुल कुबरा ने मेयार बुलंद रखा था, प्रपोज किया मैं करना चाहती हूं शादी, अगर तुम्हारा मेयार बुलंद है तो प्रपोज करो, गलत नहीं है। और इसी तरह क्या लड़का प्रपोज कर सकता है? हाँ, मौला कायनात ने प्रपोज किया है। दोनों मिसालें हैं, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, प्रोवाइडेड मोहम्मद हो, अली हो। धन्यवाद बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। बातें समझ में आ रही हैं? तो ब्रदरान अजीज, कामयाबी के कई उसूल हैं, उन उसूलों को मैंने बता दिया, और 8 दिन की मजलिसों का नतीजा यही है कि हम लोग कामयाब दीन ही के जरिए से हो सकते हैं। एक लड़की मेरे पास आई, मौलाना आई एम इन लव। मैंने कहा यू आर इन बिग ट्रबल। इसलिए कि इंसान मोहब्बत करे हर इंसान से, नफरत अच्छी चीज नहीं, नफरतें सिखाना भी अच्छा नहीं है। मेंबर मोहब्बत सिखाना चाहिए, दावत भी दीजिए मोहब्बत से, ब्रदरान अहले सुन्नत को शरीक कीजिए मजालिस में, इसलिए कि ये मकतबे अहले बैत है अखलाक के जरिए से। ऐसी बातें ना कीजिए कि दूसरे को तकलीफ हो, तकलीफ होगी तो वो बदलने वाला नहीं है। मोहब्बत से बुला, मोहब्बत से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए तो बहुत करीब होगा। आज की दुनिया बहुत अच्छी तरह से है, तो मोहब्बत से, बहुत अच्छी तरह से बुलाइए मोहब्बत से। सरकार की हदीस है, हुब्बु कल्ले शैएन युमा व यसुम। मेरी बेटी सुनो बहुत अच्छी तरह से, मेरे बच्चे सुनो, किसी को लाइक करना बुरा नहीं है, इसलिए कि उसकी नॉलेज अच्छी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अच्छे हैं, उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका खानदान अच्छा है, नथिंग रॉन्ग। पसंद करना, कोई पसंद की शादी इस्लाम में जायज है। तो सरकार ने फरमाया हुब्बु कल्ले शैइन युमा व यसुम, जब किसी चीज से मोहब्बत करते हो तो तुम अंधे हो जाते हो, तो गूंगे हो जाते, ब्लाइंड एंड डेफ। खानदान कह रहा है ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं ठीक है, पूरा खानदान जोड़ के कह रहा है कि नहीं है ठीक, नहीं हम, आई एम इन लव। जीत कभी भी इन लव मत हो जाइए, सिर्फ इन लव अल्लाह से रहिए। लव कीजिए तो उससे लव कीजिए, और मेयार मुकर्रर कीजिए तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी यकीनी है। अगर आप अंधे हो गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, गूंगे हो गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आंख खोलिए, कान खोलिए। तो आई मेरे सामने बच्ची, मैंने कहा कि बहन मेरी बेटी तू क्या कर, जरा होमवर्क कर। उसने कहा मुझे शादी करना है, आप होमवर्क करने को कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ होमवर्क करो। कैसा होमवर्क करो? होमवर्क ये करो कि मिक्स शादियां कितनी कामयाब हुई हैं। देखो, तुम देखो, रिसर्च करो जरा सा, देखो खानदान में, लोगों में, मोमिनीन में जितने भी शादियां हैं, देखो कैसे कितनी कामयाब हुई हैं, फेलियर हुआ है तो क्यों हुआ है, परसेंटेज देखो, उसके बाद नतीजा। शादी शुड बी सीरियस बिजनेस ना भाई, शादी तो यूं ही नहीं है, सीरियस बिजनेस है, इसको तो यूं ही करना नहीं है। तब सीरियस बिजनेस है तो सीरियस होमवर्क भी करो जी, सीरियस होमवर्क करो, उसके बाद नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा अरे ये गलती हो गई। तो क्या करना चाहिए मौलाना? अब चूंकि हो गई लव, मोहब्बत हो गई, क्या करना? नतीजा निकालिए। मैं कहता हूं इफ यू लव समवन गिव व्हाट ही डिजर्व्स, इफ यू लव समवन गिव हर व्हाट शी डिजर्व्स। अगर किसी से मोहब्बत करते हो उसको वो दो जो उसके लिए लाजिमी है। कौन पसंद करेगा दो ग्रुप की शादियां, खानदान अलग, ये खानदान अलग, वो मजहब अलग, ये मजहब अलग, वो घर वाले भी नाराज, ये घर वाले भी नाराज, बच्चे हुए ना इधर के ना खुदा ही मिला। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक ऐसा हो जाएगा, नहीं, ईमान, अगर इंसान ईमान की मनाजिल को तय करे मुमकिन है कि एक मोमिना, मैंने ऐसे भी देखे हैं बहुत से मुसलमान हुए, ऐसे हुए कि मोमिनीन से भी आगे बढ़ गए, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही किस्सा है, ऐसे हजारों किस्से हैं जिसमें बहुत सी मोमिनात हुई जो हमारे अमल से भी आगे बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेयार आपको मुकर्रर करना चाहिए। तो कामयाबी का मेयार कहां से शुरू होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं तरबियत बच्चा पैदा होने के बाद नहीं है, कामयाबी का मेयार बच्चा शादी से पहले किससे शादी करूं। आए हाय हाय क्या मजेदार चीज याद आ गई। ए आए ए ए भैया अकील मुझे ऐसे घराने से शादी करा दो। ऐसे घराने से शादी करा दो जिससे मेरा बेटा ऐसा पैदा हो जो हुसैन की मदद करे। खानदान का असर मौला ने जंग जमल में मोहम्मद हनफिया माँ से मशहूर हैं। किसके बेटे थे? मौला अली के बेटे। उनकी माँ का नाम हनफिया था, इसीलिए माँ के नाम से मशहूर थे मोहम्मद हनफिया। एक मर्तबा मौला ने कहा जाऊं तो बैठी हुई है उसके ऊंट पर हमला कर। हाँ तो भाई आसान नहीं है। नहीं, दूसरी मतलब निकलाओ। नो, तीन मर्तबा करना। इमाम हसन का इशारा किया, इमाम बिजली की तरह गए। उसके बाद मौला ने कहा तेरी माँ के दूध का असर है। तो इसीलिए हदीस में जब बच्चा पेट में आता है तो चौथे महीने में, जबकि कुरान ये कह रहा है वल्लदी युसव्विरु फिल अरहाम कैफा यशा, ज़ाते परवरदिगार वो है जो माँ के शिकम में जैसे चाहता है तस्वीर बनाता है। चौथे महीना जैसे ही पेट में बच्चा आया, खुदा कहता फरिश्तों जाओ माँ के चेहरे को देखो और बच्चे की किस्मत। ए फातिमा बिनते असद, सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदाया परवरदिगारा हम पैदा हुए हैं कामयाबियों के लिए, भटक रहे थे, हमें इमाम हुसैन की मजलिस ने राह दिखा दी है। मैंने कुछ नहीं किया, मजलिस को मौला ने हुक्म दिया ये मौजू पढ़ो, हुक्म दिया मैंने पढ़ दिया। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, हमारा काम था पहुंचाना, पहुंचा दिया। आपका काम अब से शुरू हो काम करना। तो इसके लिए क्या कीजिए, हर हफ्ता एक ऐसी मजलिस सुनिए, एक ऐसे आलिम के पास बैठिए जो आपको झिंझोड़े, ख्वाब से जगाए, बेदार करे, जहाँ डिविएशन हुए हैं उस पॉइंट पे लाके फिर खड़ा कर दे, तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे और कभी फेल होने का सवाल ही नहीं होगा। अब ज़रूरत नहीं कि मजलिस ना मिले, अब तो ऑनलाइन भी मजलिसें हर एक वो रुख की जिस रुख से आप चाहते हैं मजलिस मिल सकती है। खुदाया परवरदिगारा तेरा दीन कामयाब है और जिस दीन को हम मानते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामयाब हो गया। तो हमारे पास कामयाब दीन है, इनकम्प्लीट दीन दूसरों के पास है। जिसके पास अली है वो कामयाब दीन है, हमारे पास कामयाब दीन है, हमको कामयाब होना चाहिए, वरना जो है मौला अली भी हमसे राजी नहीं रहेंगे। हमको मानने वाला नाकाम हो गया। कैसे हो गया? देखो हम कैसे मैदान में जाते थे, जिस मैदान में जाते थे वह मैदान शर्मिंदा होता था, हम शर्मिंदे नहीं होते। खावो मुसल्ले का मैदान हो, खावो जंग का मैदान हो, खावो खैरात का मैदान हो, खावो खाने काबा हो या मस्जिद हो, बस हो गई, मैंने अपने फराइज अल्लाह खुदाया मैंने अदा कर दिए। चलें उस कामयाबी की तरफ जिसकी तरफ हुसैन मदीने से लेकर के चल रहे हैं। करबला वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान इवेंट का नाम है। करबला वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान इवेंट का नाम है। करबला इमाम हुसैन ऐसे नहीं जाके शहीद नहीं हुए, प्लान किया था इमाम ने। क्या प्लान किया था? देखा था कि नाना ने सवाला के मजमे में मन कुंत मौला कहा 70 दिन में मुसलमान भुला दिया। सवाला का मजमा 70 दिन में भुला दिया। मौला ने कहा ना अब सवाला को नहीं ले जाऊंगा, थोड़ों को ले जाऊंगा, मगर ऐसा इनकलाब आएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, करबला कोई नहीं भुला सकेगा। प्लानिंग थी ना भी ऐसी, सबसे अहम प्लानिंग करबला के बाद की थी, आसान काम नहीं था। इमाम हुसैन के लिए ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना औरतों को ले जाना, जबकि मौला जानते थे कैदी होंगे, चादरें छिनेंगी, तमाचे लगेंगे, बाजुओं में रस्सी आएगी, वाकिफ थे, जानते थे। مگر لے کر کے کیوں گئے؟ جانتے تھے یہ قافلہ اگر شام کو نہیں جائے گا تو شام فتح نہیں ہوگا تو پورا میرا مشن ناکام ہو جائے گا. زینب تم بھی چلو، سکینہ تم بھی چلو، تماچے کھانا لیکن نانا کے دین کو بچانا. زینب بازوؤں میں رسی ضرور آئے گی لیکن نانا کا دین بچے گا. چلو چلو. بعض چیزیں کربلا کی ایسی ہیں کہ جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی ضرورت. سب سے مشکل موقع مولا امام حسین کا کیا تھا؟ سب سے مشکل پینفل سچویشن جس کو کہتے ہیں، سب سے مشکل تکلیف دے، جبکہ حسین بھرے گھر سے نکل رہے تھے. 200 بچے 80 عورتوں نے گھیرا کیا تھا. مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں شب جمعہ گھر میں مزدوروں کو، گھر والوں کو بٹھا کر کے مجلس کرتا تھا. ایک مجلس تو ہونا چاہیے، مجلس میں شریک ہو جائیے، گھر میں بیٹھ کے مجلس سنیے، بہت بدلے گی حالت. ہر شب جمعہ میں مجلس کرتا تھا. ایک شب جمعہ بی بی آئی، کہنے لگی مجلسی آئندہ شب جمعہ کو میرے بیٹے کی رخصتی پڑھ. میں خواب سے بیدار ہوا، بی بی نے علی اکبر کے سینے کو یاد نہیں کیا، عباس کے کٹے شانوں کو یاد نہیں کیا، یہ رخصتی کو کیوں یاد کیا؟ تب پتا چلا بھرے گھر سے حسین نکل رہے ہیں، دامن کو بچے پکڑ کر کے پوچھ رہے ہیں مولا کس کے حوالے کر رہے ہیں. مولا کس کے حوالے کر رہے؟ خطبہ دیا مولا نے، اے زینب ام کلثوم، اے ماں کی کنیز فضا، اے بیبیوں بچوں، کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اب یہ راحت و آرام کے دن ختم ہو گئے. سکینہ تمہیں تماچے لگیں گے، زینب و کلثوم بازوؤں میں رسی آئے گی. جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھنی. یہ ہے دوسرا رخ خطبے کا، یہ تھا کہ تم لوگ اتنے مسائل کے بعد واپس لوٹو گی، جاؤ گی واپس. یعنی اطمینان بھی مولا دلا رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہوگا لیکن جاؤ گی. پیام لے کر کے جانا. اب حسین نکلے ہیں ان گھر کو، بھرے گھر کو چھوڑ کے. ایک روایت کے بعد آج کی شب کی دو چار جملے اور ختم دعا. باہر نکلے، فنیدر یمینا وشمالا، اللہ اکبر. اتنی تیزی سے دنیا بدل جائے، 8 گھنٹوں میں، 2 پہر میں پورا گھر خالی ہو گیا. چاہنے والے جو سائے کی طرح مولا کے پاس تھے. حبیب مسلم، مولا پکار رہا ہے، جواب دو. مولا جنگ کرتے تھے، دیکھیے ایک ہی چیز ہے، مولا جنگ کرتے تھے، گھمسان کی جنگ، جنگ کرتے کرتے جنگ کو روک دے دیتے، گھوڑے کو ایڑ دے کر کے موڑ دے دیتے، موڑ کے خیام کے پچھلے حصے میں جاتے تھے، اتر جاتے تھے، تلوار کو زمین پر ٹیکتے تھے اور آسمان کی طرف بلند ہو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی دو کام تھے مولا کے، جنگ کر رہے ہیں، گھمسام کی جنگ چل رہی ہے، جنگ کرتے کرتے جنگ کو روک دیتے تھے، پھر گھوڑے کو پلٹاتے تھے، پلٹ کے جاتے تھے خیام کے پیچھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں کرتے تھے مولا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہید جب جنگ لڑتا تھا تو کوئی نہ کوئی پیام دینے والا تھا، اب جنگ ہو رہی ہے کوئی میسج دینے والا نہیں ہے، حسین سمجھا رہے تھے سکینہ گھبراؤ نہیں، زینب پریشان نہ ہونا، بیویوں میں زندہ ہو، جملہ کہو رونے کے لیے کافی ہے، ارے یہ جب آواز بند ہو جائے بیویوں کا کیا حشر. جب یہ آواز بند ہو جائے بیویوں کا کیا حشر ہو. آواز بند ہوئی، زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا قیامت آ گئی، اٹھو. سید سجاد لرستے ہوئے آئے ہیں، اب بیٹی اپنے گھونسلوں کو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں کو پوچھتی تھی بچی پھر ہم کب جائیں گے گھر کو. سکینہ تجھے گھر نصیب نہیں ہوگا، قید خانہ. سید سجاد قبر کھودتے ہیں، بچی کو دینا چاہو، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بیٹا میری امانت دے دو. شاید کہا ہوگا بابا جب میں نے لیا تھا گالوں پہ تماچے نہیں تھے، اب یہ بچی زخم. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي ولت بفنائك وانا اخذ برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعله الله الاخر العهد مني لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله.